लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते एत एसुलताते की शुरुआत की है। यह संत पापा फ्रांसिस का तीसरा प्रेरितिक प्रबोधन है जो 9 अप्रैल 2018 को प्रकाशित हुआ था। यह हम सबों के लिए वर्तमान विश्व में पवित्रता हेतु एक निमंत्रण है। अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाहते हैं कि हम वर्तमान परिवेश में जहां कहीं भी हैं, अपने में पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में वे क्रियाएं जो हमें पवित्र बनाती हैं के संबंध में कहा कि क्या पवित्र आत्मा हमें कोई प्रेरितिक कार्य शुरू करने की प्रेरणा प्रदान करती और बाद में उसका परित्याग करने को कहते या उसे पूरी लगनता से ना करने को प्रेरित करते हैं जो हमें शांति प्रदान करता हो। संत पापा कहते हैं कि हम इस बात को भूल सकते हैं कि जीवन में प्रेरिताई नहीं है बल्कि जीवन ही प्रेरिताई है। श्रोताओ, हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कोई भी कार्य जिसे हम चिंता में करते हैं, घमंड या दूसरों को आकर्षित करने हेतु करते हैं, हमें पवित्रता की ओर नहीं लेती है। हम अपने कार्यों को उस निष्ठा में पूरा करने हेतु चुनौती प्राप्त करें जिससे हम जो कुछ करें वह सुसमाचार के अर्थ को व्यक्त करे और हम यीशु ख्रिस्त में और अधिक पहचान बना सकें। हम बहुत बार उदाहरणों में धर्म शिक्षा की आध्यात्मिकता, धर्म प्रांतीय पुरोहितों की आध्यात्मिकता, कार्य करने की आध्यात्मिकता की बात करते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यही कारण है कि मैंने एवेंजेली गौडियम में प्रेरिताई की धार्मिकता, लौदातो सी में पर्यावरण की आध्यात्मिकता और अमोरिस लेतित्से में पारिवारिक जीवन की आध्यात्मिकता की चर्चा की है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम शांति के क्षणों, एकांतवास और ईश्वर के सम्मुख शांत रहने की बातों को नजरअंदाज करें। हम चीजों को ठीक इसके विपरीत पाते हैं। तकनीकी रूपों में नई चीजों की उपस्थिति, यात्रा करने का उत्साह और उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की अंतहीन श्रृंखला हमारे लिए ईश्वर की आवाज को सुनने हेतु कोई भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। हम शब्दों से अपने को भरा पाते हैं जो हमें छिछली खुशियां प्रदान करती हैं, जो शोर गुल से भरी होती हैं। वे वास्तव में आनंद से भरे नहीं होते बल्कि उन लोगों के लिए असंतोष से भरे होते हैं जिन्होंने जीवन का अर्थ खो दिया है। हम इस चूहिया दौड़ में रोक लगाने और अपने लिए व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के संग वार्ता करने की आवश्यकता की अनुभूति का एहसास कैसे नहीं करते हैं। इसके लिए स्थान की खोज अपने में कष्टदायक हो सकती है लेकिन यह सदैव हमारे लिए फलप्रद होता है। देर सवेर हमें अपने जीवन के सच्चे रूप का सामना करते हुए ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देने की जरूरत है। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने को एक भयभीत करने वाले प्रलोभन के गहरे खोह में झांक कर नहीं देखते हैं। यह पूरी तरह से निराशा की घाटी पर खड़ा होकर अपने में गश खाकर गिरने की अनुभूति से रूबरू नहीं होते हैं या खुद को पूरी तरह से अकेला और परित्यक्त नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों के आने पर हम अपने जीवन को पूर्ण रूपेण जीते हुए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करने हेतु कृत संकल्प होते हैं। वहीं वे विघ्न बाधाएं जो आज की दुनिया में सर्वव्यापी हैं, हमें अपने खाली समय की पूर्ति हेतु उन बातों के लिए प्रेरित करती हैं, जहां हम अपने को उन उपकरणों के संग पूर्ण रूपेण संलग्न करते हैं जो हमें मनोरंजन या क्षणिक सुख प्रदान करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने प्रेरिताई कार्य से नाराज होते हैं, हमारी निष्ठा सुस्त हो जाती है और हमारी उदारता तथा तत्परता रूपी सेवा की ऊर्जा में मंदी आ जाती है। यह हमारे आध्यात्मिक अनुभव को विकृत कर देता है। क्या कोई आध्यात्मिक कार्य अपने में उचित हो सकता है जब हम उसे सुसमाचार में या दूसरों की सेवा में ढिलाई से घिरा हुआ पाते हैं? हममें आध्यात्मिकता के भाव होना जरूरी है जो हमारी सेवा और हमारे अकेलेपन को भरती है। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन और सुसमाचार के हमारे प्रयास को सफल बनाती है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वरीय त्याग में प्रेम की निगाहों से देखने के योग्य बनते हैं। इस भांति हमारे जीवन के हर क्षण पवित्रता की ओर बढ़ने के कदम बन सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम पवित्रता से भयभीत ना हों। यह हमारी किसी भी शक्ति, जीवटता या खुशी का दोहन नहीं करती है। इसके विपरीत हम अपने को वैसा ही बनता पाते हैं जैसे कि पिता ईश्वर ने सृष्टि के समय हमारे बारे में सोचा था, और यह हमें अपनी पूर्ण निष्ठा में बने रहने को अग्रसर करती है। ईश्वर में अपने को निर्भर रखना हमें सभी तरह की गुलामी से मुक्त होने में मदद करता है, और इसके द्वारा हम अपने पूर्ण मानवीय सम्मान को पहचानने के योग्य बनते हैं। हम इसे संत जोसेफिन बखीता के जीवन में पाते हैं। वह 7 साल की कोमल आयु में अपहरण कर ली गई और उसे बेच दिया गया। उसे अपने स्वामियों के हाथों क्रूरता का शिकार होना पड़ा, लेकिन उसने इस सच्चाई को गहराई से समझा कि मनुष्य नहीं अपितु ईश्वर हर मानव और हर जीवन के सच्चे मालिक हैं। यह अनुभव अफ्रीका की उस दीन बेटी के लिए बहुत बड़े ज्ञान का स्रोत बना। श्रोताओं, एक ख्रिस्तीय अपने जीवन में जितना अधिक पवित्रता में विकास करता, वह उतना ही अधिक अपने जीवन में फल उत्पन्न करता है। पश्चिमी अफ्रीका के धर्माध्यक्षकों ने इस बात का अवलोकन किया है। हमारा बुलावा पवित्र आत्मा में नवीन सुसमाचार के प्रचारक बनने हेतु हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम बपतिस्मा प्राप्त अपने को और दूसरों को सुसमाचार की शक्ति से पोषित करते हैं। हम अपने कार्यों को, चाहे हम जहां कहीं भी रहते, पृथ्वी की नमक और दुनिया की ज्योति स्वरूप करते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि आप अपनी निगाहों को ऊंचाई की ओर बनाए रखने में भयभीत ना हों। आप अपने को ईश्वर के द्वारा प्रेम करने और अपने आप को उनके द्वारा स्वतंत्र करने की अनुमति दें। आप अपने को पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होने देने से ना डरें। पवित्रता आपको कम मानव नहीं बनाती है, क्योंकि यह स्वयं की कमजोरी और ईश्वरीय कृपा की शक्ति का मेल है। लियोन बलोई के शब्दों में, जब सभी चीजें कही और की जाती हैं, जीवन की सबसे बड़ी निराशा एक संत नहीं बनना है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते एत इंसुलताते पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मिट जाएंगे सबके जीवन के गम। प्रीति भोज के भागी होंगे हम, मिट जाएंगे सबके जीवन के गम। प्रीति भोज के भागी होंगे हम, संग संग मिलकर हम हृदय तुझे चढ़ाएंगे, दिल से गाएं तेरी महिमा। बंधन में बंध जाएंगे हम, तेरे जीवन के भागी होंगे हम। प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे हम, तेरे जीवन।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 26 अक्टूबर के ट्वीट संदेश में सेवा के रास्ते पर यीशु का अनुसरण करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने संदेश में लिखा, यीशु के पीछे चलना यीशु के पक्के भरोसे के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, यह जानते हुए कि हम ईश्वर की प्रिय संतान हैं। यह प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए। विश्व के कई तीर्थस्थलों में पौत्र रोजरी माला विनती कर ख्रिस्तों के लिए एवं मध्य पूर्व में शांति हेतु प्रार्थना की गई। 25 अक्टूबर को फिलिस्तीन की माता मरियम के पर्व दिवस पर सीरिया, मिस्र, इराक, लेबनान, इसराइल और फिलिस्तीन ने मेक्सिको सिटी के ग्वादालूपे की माता मरियम के महागिरजाघर में ख्रिस्तों एवं पौत्र भूमि के लिए रोजरी माला विनती की। अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना का आयोजन कैथलिक नेट, जेनिथ, मगदला, तेरा सांता मेक्सिको एवं रेनियम क्रिस्टी ने की थी। कैथलिक संगठनों ने अपने सोशल नेटवर्क पर सभी विश्वासियों को फिलिस्तीन की माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा मध्य पूर्व में शांति हेतु प्रार्थना करने का निमंत्रण दिया था, जो ख्रिस्तियों पर अत्याचार, नौकरी के अवसरों की कमी, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, लगातार आंतरिक एवं बाह्य युद्ध और विरोध के कारण पीड़ित हैं। रोजरी माला विनती मेक्सिको सिटी से सुबह 9:30 बजे अरबी, स्पैनिश और आरामी भाषाओं में की गई। सीरिया में प्रार्थना का संचालन अलेपो के महाधर्माध्यक्ष मोनसिनियोर अंतोनी चादा ने किया। मिस्र में फादर लुइस मोंतेस ने, इराक में फादर एंड्रिक मोंतेस, लेबनान में मारोनाइट मठवासी फादर याकूब ने किया। म्यांमार के कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने मिशन रविवार को विश्वासियों का आह्वान किया है कि वे इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने देश के लिए आवाज बने। उन्होंने इस बात पर गौर किया है कि हर प्रकार के अंधेरे में कलीसिया आशा की ज्योति बनती है। यंगून के कार्डिनल ने म्यांमार के कैथलिकों से आग्रह किया है कि वे बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं जो उनके देश को तबाह कर रही है, घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से। उन्होंने यह आग्रह 24 अक्टूबर मिशन रविवार को मिस्सा के दौरान किया। संत पापा द्वारा इस साल के लिए चुनी गई विषय वस्तु, हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं, पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश में बोलने के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, जहां 1 फरवरी को तख्ता पलट के 9 महीने बाद भी सेना द्वारा क्रूर दमन का सिलसिला जारी है। क्रूर हिंसा जो कलीसिया पर निशाना साध रही है, उसके सामने कार्डिनल ने विश्वासों का आह्वान किया है कि शक्तिशाली लोगों से बोलें जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, जैसा कि प्रेरितों और आरंभिक कलीसिया के ख्रिस्तों ने रोमी सम्राट के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि इस समय में चुप रहना अपराध हो सकता है जब बुराई सड़कों पर नाच रही है। कार्डिनल ने याद दिलाया कि यीशु ने किस तरह शक्तिशालियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें रोमी सैनिकों द्वारा थप्पड़ मारा गया था। तब उन्होंने कहा था, यदि मैंने सच बोला तो तुम मुझे मारते क्यों हो। सैनिक जिन्होंने यीशु को थप्पड़ मारा था उनके पास जवाब नहीं था। सच्चाई के सामने हथियार अधिक महत्वपूर्ण हो गया था और पिलातुस ने भी आपराधिक चुप्पी का चुनाव किया था। इस बात को याद करते हुए कि इस साल का मिशन रविवार कलीसिया से सुनने देखने और एक सिनोडल कलीसिया के रूप में लोगों के साथ चलने का आह्वान कर रहा है, यंगोन के महाधर्मदर्श ने क्रूस के अनंत रास्ते की याद की जिसको सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार के लोग सह रहे हैं। हम हमारे लोगों के रुदन को सुन रहे हैं जो यीशु के समान पांच घावों से घायल हैं। कोविड, युद्ध, विस्थापन, आर्थिक पतन, जलवायु तबाही और संकट। कार्डिनल बो ने स्मरण दिलाया कि देश में ईश्वर के प्रेम के सुसमाचार की घोषणा, जिसने कई निर्दोष लोगों पर अत्यंत अमानवीय पीड़ा देखी है, सिर्फ प्रभु से मुलाकात करने और प्रेरितों के समान उनके प्रेम का एहसास करने के द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारे दुश्मनों द्वारा पोषित नफरत को अपने अंदर लेने का मतलब होगा हार। हालांकि जीवित ईश्वर का अनुभव करना चीजों को आसान नहीं बनाता। प्रथम ख्रिस्तियों ने विश्वास के जीवन की शुरुआत विरोध और कठिनाई के बीच की थी। वही क्रूर हिंसा, मौत और भय का अनुभव हमारे लोग कर रहे हैं, खासकर युवा। कार्डिनल ने कहा कि करुणामय आशा, यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं के लिए भी, यही कलीसिया का मिशन है, खासकर आज के म्यांमार में। म्यांमार की कलीसिया को ऊंचे और नीचे रास्तों से होकर चलना है, विस्थापित लोगों के जंगल से, शोक से डूबे परिवारों, सुदूर गांवों से जो गरीबी से परेशान हैं, असमय मौत से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में छिपे लोगों तक पहुंचना है और उन लोगों के पास भी पहुंचना है जिन्होंने बुराई का रास्ता चुना है। कार्डिनल बो ने अपने प्रवचन में शक्तिशालियों से जोर देकर अपील की है कि वे म्यांमार में हथियार बेचना बंद करें। हम सभी म्यांमार के लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करना जारी रखें कि यह राष्ट्र शांति का दिन देख सके। 22 अक्टूबर को यूएन ने चिंता जताई है कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम में हजारों सैनिकों की आवाजाही के बाद म्यांमार में मानवाधिकार की स्थिति और खराब हो सकती है। 1 फरवरी के तख्ता पलट के बाद से, जिसने आंग सांग सू की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था, देश अराजकता में डूब गया है क्योंकि सेना तख्ता पलट के विरोध को बेअसर करने में विफल रही है, जबकि पीपल्स डिफेंस फोर्स बर्मी सेना से लड़ना जारी रखी हुई है। 12 दिसंबर को कारितास इंटरनेशनल अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसके महासचिव आल्विस जोन ने वैटिकन मीडिया से बातें करते हुए इस वर्षगांठ के महत्व पर प्रकाश डाला तथा महामारी के समय में कारितास परिसंघ की सबसे बड़ी चुनौती को उजागर किया। संत पापा पियूस 12वें ने जब 12 दिसंबर 1951 को इसकी स्थापना की थी, तब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उत्पन्न मानवीय आवश्यकताओं का सामना और संघर्ष के शिकार लोगों की मदद कारितास इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य था। यह राष्ट्रीय कारिता संगठनों का समूह है जिसमें शुरू में 13 संगठन थे जो अब बढ़कर 162 हो गए हैं। 70 सालों की अवधि में इसके कार्यों और क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। शुरू के समान आज भी इसके केंद्र में ठोस उदारता का साक्ष्य है ताकि खासकर कमजोर लोग ईश्वर के करुणामय प्रेम का एहसास कर सकें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।